तस्वीर और सूरत मोहम्मद। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक बात बहुत याद आती है। मेरा ख्याल है मैं 17-18 साल की थी, मतलब यही उम्र होगी। तो मेरी आदत ही, मेरी बड़ों से दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है, बुजुर्गों से, बड़ों से, या जो नेक नेक लगते हैं। समझ तो इतनी नहीं थी, लेकिन जो लगते हैं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, तो ऐसे लोगों से मिलना, बात करना। तो एक हमारी दोस्त थी, बड़ी उम्र की थी, लेकिन उनको कुरान से बड़ा ताल्लुक था। उनका बड़ा शौक और बड़ी लगन, बड़ी मोहब्बत, और वो तर्जुमा रवानी से कर लेती थी, उनको ग्रामर वगैरह भी आती थी। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आपको कौन सी सूरत बहुत पसंद है। कहने लगी सूरत मोहम्मद। मैंने कहा अच्छा। अब मैं घर गई, जाके मैंने कुरान खोला, और तर्जमा तो आता नहीं था, फिर उसका तर्जमा ही पढ़ा, पर मुझे तो कुछ समझ ही ना आई, मुश्किल मुश्किल सी लगी। और वैसे भी जैसे देखें बहुत सी सूरतें हैं, जैसे सूरत मुजम्मिल है, कहफ है, मुल्क है, यासीन है, रहमान है, वाकया है, तो डिफरेंट उनका अंदाज है ना। लेकिन सूरत मोहम्मद उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी सूरत है, बहुत जबरदस्त सूरत है। उस वक्त नहीं समझ आई थी उनकी बात की, पढ़ा देखा और फिर मैं बस खामोशी हो गई कि पता नहीं इनको जो चीज इसमें से मिल रही है मुझे क्यों नहीं मिल रही, समझ ही नहीं थी जाहिर है। लेकिन अब आप इसको पढ़ें, आपको तर्जमा, तफसीर और पूरी बैकग्राउंड, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना, सहाबा का हिजरत करना, मक्की दौर का आखिर आ चुका है, मदनी दौर शुरू हो रहा है, और अब मुसलमानों को कहा जा रहा है, पहले अब तक ये कहा जाता रहा कि अपना इखलाक, अपना किरदार, अपने अपनी बुनियादों को मजबूत करो, अपने अकायद को मजबूत करो, अब कहा जा रहा है कि उठो और खड़े हो जाओ। तो अब समझ आती है बात की। और आयत नंबर 12 से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मजमून बयान करते हैं, ये बड़ा ही खूबसूरत मजमून है। और इसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि ईमान और जन्नत की कदरों कीमत मेरे नजदीक क्या है, क्या कदरों कीमत है, और ईमान और अमले सवाले करने वालों को मैं क्या दूंगा। फरमाया इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, युदखिलू दाखिल करता है, करेगा, फेल मजारे हैं, दो जमाने पाए जाते हैं, दाखिल करता है, करेगा, कहां दाखिल करेगा, किन्हें दाखिल करेगा, अल्लाजीना आमनू वामिलुस्सालिहाती, वो लोग जो ईमान लाए और अमले स्वाहले किए। तो याद रखिएगा ईमान और अमले स्वाहले लाजिम मलजूम है, जैसे जिस्म और रूह लाजिम मलजूम है ना। अगर रूह जो है वो जिस्म में ना हो, और जिस्म कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, जब रूह नहीं है तो ऐसी लाश को मनोमट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। तो ईमान की मिसाल रूह की है, और ऐसे अमाल जिनके अंदर ईमान ना हो, ऐसे अमाल जो हैं उनकी अल्लाह के नजदीक कोई कदरों कीमत नहीं है। और फिर दूसरी बात कि रूह तो है लेकिन जिस्म नहीं है, ईमान तो है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया लेकिन फिर अमल नहीं किए, तो ये तो फिर मुनाफ़कत हो गई ना। तो ऐसे अमाल की भी अल्लाह के नजदीक कोई कदरों कीमत नहीं है, ऐसे ईमान की, ऐसे ला इलाहा इल्ला कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। ला इलाहा इल्ला कहने की भी अल्लाह ताला के नजदीक कोई कदरों कीमत नहीं है, क्योंकि बाज लोग ये समझते हैं कि ला इलाहा इल्ला कहना है और बस कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। तो ईमान और अमले सवाले की मिसाल बीज और दरख्त की सी है, बीज उम्दा हो और बेहतरीन हो, अच्छा हो, तो उससे जो है वो बेहतरीन पौधे निकलते हैं और फल फूल दरख्त पर आते हैं। और अगर बीज नकारा हो, नक्स वाला हो, बीमार हो, खराब हो, सड़ा हुआ हो, तो फिर उससे जो है वो दरख्त नहीं उगा करते, फिर उसे उस दरख्त पर फल फूल नहीं आया करते। इन्नल्लाहा युदखिलुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती, बेशक अल्लाह, जरूर अल्लाह दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और अमले सवाले करते रहे। मैं और आप अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें कि ईमान की हालत क्या है और अमले सवाले की हमारे की मिसाल क्या है। जन्नातिन, कहां अल्लाह उनको दाखिल करेगा? जन्नतों में, उन जन्नतों में दाखिल करेगा। और इसके आप दो मानी जो है वो ले सकती हैं। एक मानी तो क्या है कि बहुत सी जन्नतें छुपी हुई जो अल्लाह ने बनाई हुई है, और दूसरे बागात है ना। जन्नत क्या है? वो इनाम जो अल्लाह ताला मोमिनीन को देगा उनके ईमान और अमले सवाले के नतीजे में, ईमान और अमले सवाले के नतीजे में जो है ना वो मिलने वाली है जन्नत। तो बहुत बड़ा इनाम उनके लिए तैयार कर रखा है, जन्नातिन। और अब यहाँ पे जन्नात जो है ना उनकी उनकी मंजरकशी की जा रही है, उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है, और डिस्क्रिप्शन बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। घर भी मसलसल इन आयात पे मैं सोचती रही कि अल्लाह ईमान लाने वालों की और अमले सवाले करने वालों की जो है वो इतनी बेहतरीन उनकी जो है वो मेहमान नवाजी करेगा, और जिसका मेजबान हो अल्लाह और अल्लाह के वो मेहमान ठहरे तो फिर उनकी खुशकिस्मती के क्या कहने। और वो अपनी खुशकिस्मती पर जितना भी नाज करें उतना ही कम है। तजरी बहती हैं, मिन तहतिहल अनहारू, इनके नीचे नहरें। अब यहां पे एक नहर की बात नहीं हो रही, अनहार बहुत सी नहरें उन बागात के नीचे बहती होंगी। और आप देखें कि नहरों के सिलसिले में कि जन्नत की नहरें जो हैं वो कितनी हैं, बहुत सी नहरें हैं। जैसे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैहानु व जैहानु वल फुरातु वन नीलु कुल्लु मिन अनहारिल जन्ना। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है कि सैहान, जैहान, फुरात और नील जन्नत की नहरों में से है। फिर इसी तरह हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को रवायत किया। हजरत अंस बिन मालिक कहते हैं, यानी हजरत अंस जो थे जो मालिक के बेटे थे, वो कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या पूछा गया कि मल कौसर, कौसर क्या है? पाला, जा का नहरुन, ये एक नहर है। आतानीहु, अता किया है इसको मुझे अल्लाहु अल्लाह ने, यानी फिल जन्नती, जन्नत में, ये एक नहर है जो मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत में अता की है। अशद्दु बयाजम मिनल लबनी, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, व आहला मिनल असली, और शहद से ज्यादा मीठा, फीही तैरुन, इसमें परिंदे उड़ते हैं, आनाकुहा कआनाकिल जजरी, जिनकी गर्दनें ऊंटों की सी हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने अर्ज किया, इन्ना हाजे नाइमा, वो परिंदे तो खूब मजे में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकलतुहा अनअमु मिन्हा, इन परिंदों को खाने वाले ज्यादा मजे में हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उन्हों की बात और फिर रसूल अल्लाह का जवाब देखे कितना खूबसूरत है। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्हों कहते हैं कि परिंदे बड़े मजे में हैं, जन्नत की नहर में परिंदे, और फिर उनकी डिस्क्रिप्शन, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना कि खाने वाले तो उससे भी ज्यादा मजे में हैं। फिर इसी तरह इस हदीस को जो है वो तिर्मिजी ने रवायत किया है, और सही हदीस है कि हजरत हकीम बिन मुआविया रजी अल्लाह अन्हु अपने बाप से रवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जन्नति बहरल माई, बेशक जन्नत में पानी का समंदर है, व बहरल असली, और शहद का समंदर, व बहरल लबनी, और दूध का समंदर, व बहरल खमरी, और शराब का समंदर, सम्मा फिर तशक्ककुल अनहारु बादु, और फिर इन नहरों से छोटी नहरें निकलेंगी जो जन्नतियों के महलात में ले जाई जाएंगी। तो ये हदीस भी कितनी खूबसूरत है। फिर इसी तरह जन्नत की एक नहर का नाम नहरे हयात है, जिसका पानी जहन्नुम से निकलने वालों पर डाला जाएगा तो दोबारा बीज की तरह उग पड़ेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ऐसे खूबसूरत बागात में, जन्नतों में अल्लाह इनको दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। और बड़ा खूबसूरत लगता है वो घर के जिसमें जो है वो घर भी है और फिर आबशार गिर रही हो, या फिर बाज लोग समंदर के किनारे, झीलों के किनारे घर बनाते हैं, घर बड़े महंगे होते हैं। फिर इसी तरह बाज लोग जो है ये समंदर का सफर करते हैं। समंदर का जब सफर करते हैं तो क्या करते हैं, काफी अच्छा समंदर के अंदर रहते हैं, बाज लोग 2 वीक का, बाज लोग 1 महीने का, और बकायदा एक पैकेज होता है। और समंदर में जो जहाज फिर चलता है, पूरी एक जैसे शहर आबाद होता है, उसमें दुकान भी है, उसमें दोस्त भी आपस में मिलने के लिए एक दूसरे को जाते हैं, बाज रिश्तेदार आपस में सारे मिलकर वहां पे बुकिंग करवा लेते हैं। आपने भी सुना होगा, देखा होगा, हो सकता है आप में से कोई गया हो, क्योंकि मेरी एक तालिबे इल्म जो है वो अभी पिछले दिनों गई थी तो बता रही थी कि मैंने ना वो जो जहाज था उसकी उसके ऊपर बालकोनी बुक करवाई, उसके पैसे ज्यादा थे, तो बाकी रिश्तेदारों ने नहीं करवाई क्योंकि उसको बहुत शौक है समंदर के नजारे देखने का और ग्रीनरी और फितरत और नेचर से बहुत मोहब्बत करती है। तो कह रही थी कि बस मैं बैठकर सुबह शाम रात को बालकोनी पे चली जाती थी और देखती रहती थी, नजारा करती रहती थी ना। तो इंसान क्या चाहता है, ये इंसान की फितरत है, ये वो पसंद करता है नेचर को, फितरत है उसकी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके नीचे नहरें बहती होंगी। अच्छा, ईमान और अमले सवाले लाने वालों का सिर्फ इतना जिक्र करके कि उनको जन्नतों में दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, अब साथ ही कहा जा रहा है वल्लज़ीना कफरू, और रे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। तो कुफ्र करने वाले कौन है, जिन्होंने ना अल्लाह पर ईमान लाए, ना अल्लाह के रसूल पर, ना अल्लाह की किताब पर, ना कयामत के दिन पर, और ना ही फरिश्तों पर, किसी चीज पर भी वो ईमान नहीं लाए, उन्होंने इनकार ही किया। अब यहां पर इनकी दो सिफात का जिक्र किया जा रहा है, एक है यतमत्तऊना, वो लज्जत उठाते हैं, वो फायदा उठाते हैं। और आप देख लें कि मता के मानी होते हैं थोड़ी देर का फायदा, और यहां पे शद भी आ गई है, फेल मजारे है, तो वो फायदा जो दुनिया में फायदा हासिल करते हैं, जो मजा उठाते हैं, तो क्या है कि बस दुनिया में ही उलझे हुए हैं, दुनिया जो छोटी सी है, नापायदार और आरजी दुनिया है, उसी के फायदा हासिल करने में लगे हुए हैं। तो क्या करते हैं, वह या कुलूना, और वो खाते हैं। उनकी जिंदगी के दो ही मकसद हैं कि दुनिया में मजे करना, उससे फायदे उठाना, और दूसरा मकसद क्या है, वह या कुलूना, और वो खाते हैं, कमाता कुल अनआमु, जैसे के खाते हैं जानवर, जैसे के खाते हैं अल अनआम। अफसोस की बात क्या है कि उनकी जिंदगी का मकसद जो है दुनिया की रंगरलियां मनाना, मजे उठाना, और ऐसे खाना जैसे कि अनआम खाते हैं। आप बताइए, कभी आपने किसी जानवर को खाते हुए देखा है? आपने किसको देखा, मसलन ऊंट को देखा आपने, गाय को देखा, और तो जानवर जो है आप ना नोट करें, ये भी आपका होमवर्क है कि जानवर को ऑब्जर्व करें और देखें कि जानवर कर खाने का अंदाज क्या है। अगर बाज लोग शहरी इलाकों में रहते हैं तो कुर्बानी जब आती है, ईद कुर्बानी की, तब तो आप अपने घर में लाते होंगे ना गाय बकरा या इस तरह, आप देखते होंगे कि वो क्या करते हैं। तो जानवर अमूमन क्या करता है, क्या उसका अंदाज होता है कि जो है वो हर चीज मुंह में डालना चाहता है। बाज़ुकात खाने वाली होती है, बाज़ुकात वो खाने वाली नहीं भी होती, फिर वो ढेर सा खाता है, फिर वो क्या करता है और क्या करता है कि जो खा लेता है बस अंदर फौरन डाल लेता है उसको, फिर बाद में बैठकर यगाली करता रहता है। जैसे गाय के ही 4 मेदे हैं, आपको पीछे बताया था हमने जब पढ़ा था कि उसके 4 मेदे हैं, एक दफा बस ऐसे ही डाल लेती है, फिर उसको वो यगाली के जरिए जो है वो नरम करती है, उसको अच्छी तरह हजम करती है, फिर एक और जगह जाता है उसके तीसरे दूसरे मैदे में, फिर उसे आगे ट्रांसफर होता है, है ना। तो इसी तरह ऊंट को देखें, आपने ऊंट की मिसाल दी, तो ऊंट को देखें कि ऊंट कितना पानी पीता है, 22 दिन तकरीबन वो पिए बगैर जो है वो सहरा में सफर कर सकता है 20-22 दिन, एक पूरी टैंकी उसकी जो है। और बाज़ औक़ात सहराई सफर में जब पानी खत्म हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उनको जिबा करते हैं और उसकी वो जो टैंकी होती है उसमें से वो पानी पीते हैं। गो के वो बड़ा ताफुन वाला होता है, अच्छा नहीं होता, लेकिन इसलिए कि सहरा में अब कोई चीज है ही नहीं, वहां पे ऐसे थोड़ी है जैसे यहाँ पे सहूलते हैं। तो फिर मौत, तो जब मौत नजर आती है तो फिर इंसान सब कुछ करने पे तैयार हो जाता है ना। तो इसी तरह जानवर और क्या करते हैं, यानी बहुत ज्यादा अपने अंदर जमा कर लेते हैं, और क्या करते हैं कि ये नहीं देखते कि ये चारा जो है ये मेरे मालिक ने मुझे दिया है या नहीं। अभी मालिक ने बाज़ अवकात दिया नहीं होता, लेकिन वो बगैर मालिक के दिए ही खाते हैं और फिर उनका वो बीमार हो जाते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते कि चारा हमारे मालिक का है कि नहीं। किसी भी खेत में चले जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो चरते हैं, चुगते हैं। और आप सोचें, मसलन वो ये नहीं देखते कि ये खेत है या फूल है। कभी किसी बागीचे में भी, किसी गार्डन में जो फूलों से सजा हुआ हो, बहुत ही खूबसूरत है। आपके घर में भी ऐसे जानवर हो सकते हैं कि आए और बस अभी बांधने में, या जो भी नौकर थे उन्होंने उसको बांधने में देर कर दी और वो सारे फूलों का जो था ना वो सफाया कर गए, और आप जो है वो काफी अफसोस मलती रह गई कि अरे इन्होंने, ये कैसे जानवर हैं। और कभी आप अपने आप को कोसती हैं, कभी नौकरों को, कभी जानवरों को, कि सारे बागीचे का सत्यानाश कर दिया मिनट के मिनट में। और कभी आप देखेंगे घर से जो जानवर ये लोग निकाल के लेके जाते हैं नौकर चाकर, तो वो अगर किसी का घर भी रास्ते में खुला हुआ नजर आए तो उसके अंदर धड़ 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 सब चले जाते हैं। और बकरियां तो जहां भी मुंह उठाए चली जाती है, हमको समझ भी नहीं आती कि भेड़िया जो हमें पकड़ लेगा ना। तो बहरहाल आप इसकी रिसर्च करें, बहुत सी बातें आपके सामने आएंगी। तो इस बात का निचोड़ क्या हमारे सामने आया कि जानवर की जिंदगी का मकसद जो है बस खाना है, फिर वो खाते खाते ही आंखें बंद कर लेता है, सोना है, और फिर अपनी सेक्स की ख्वाहिश को पूरा करना, नस्ल जारी करना। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। तो मुसलमान जो हैं ईमान लाने वाले, और एक इंसान भी उसकी जिंदगी का मकसद, अल्लाह ने ये नहीं बनाया कि वो खाए, वो सोए और जानवरों की तरह अपनी नस्ल जारी रखे। उसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात में से पैदा किया। तो काफिर क्या करते हैं, वो जानवरों की तरह जीते हैं। जानवरों की बाज़ का सोने की जगह भी साफ नहीं होती है ना, बस कुछ ख्याल नहीं है, दो ही मकसद है, खाना है और जिंदगी गुजारनी है और जिंदगी के मजे लेने हैं। तो काफिरों ने सोचा ही ना कि हमारे हमें दुनिया में क्यों भेजा गया, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। और वो खाते हैं, पीते हैं, दुनिया से फायदे उठाते हैं और जानवरों की तरह जीते हैं। हमें अपना साथ साथ मुहासबा करना चाहिए कि कहीं खाना पीना और घर सजाना ही तो मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप में से हर शख्स की ये ख्वाहिश हो कि मैं स्किलफुल बन जाऊं, और आप स्किलफुल बनने के लिए क्या करती हैं, आप ये चाहती हैं कि आप बहुत माहिर बन जाएं, और आप क्या चाहती हैं, आप ये करती हैं कि आपको कपड़े सीने भी आने चाहिए, आप बेहतरीन कपड़े इस तरीके में आप पसंद करती हैं, कपड़ों की फिटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, कपड़ों पे डिजाइन कढ़ाई लेसेस बड़ी अच्छी लगी होनी चाहिए, डिजाइन मास्टर आपके अंदर है। फिर घर की सफाई, बाज लोगों को तो एक तरह से वहम हो जाता है, हर वक्त सफाई के पीछे लगे हुए हैं, हर वक्त सफाई के पीछे लगे रहे। मैं ये नहीं कह रही कि सफाई ना की जाए, वो निस्फ ईमान है, लेकिन और भी बहुत काम करने के हैं। फिर घर की डेकोरेशन, या फिर ये हर वक्त वो किचन की प्लानिंग करते रहते हैं, क्या खाना है, इधर देखें तो रेसिपी ले रहे हैं, इधर देखें तो रेसिपी दे रहे हैं, खाना पकाना और इसी में जिंदगी अपनी बिता देना। लेकिन याद रखिएगा, हर चीज में परफेक्शन हमें नहीं मिल सकती। तो फिर परफेक्शन किसने हासिल करनी है, बहसियत बेटी के, बहसियत बीवी के, बहसियत माँ के, बहसियत बहन के, भाभी के, नंद के, सास के, बहू के, कोई भी किरदार है अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना, कोई भी रूप है मेरा और आपका। बाज लोग बाज रूप में बड़े घिनौने होते हैं, उनका किरदार बड़ा ही घिनौना और बड़ा ही बदबू वाला, ताफुन वाला होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत, आपकी ये हदीस, आपका ये फरमाना बहुत डराता है कि जब एक सहाबी ने किसी के बारे में बहुत तारीफ की उसके बारे में कि वो बहुत अच्छा है, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुमने उसके साथ सफर किया? तो आपने ये फरमाया कि किसी के बारे में जब जानना चाहो कि वो कैसा है, तो उसके घर वालों से उसके बारे में राय लो। मैं एक बनने वाली सास को जानती हूँ कि बेटे की बात तय कर रही हैं और बड़े जोको शौक से तैयारी कर रही हैं कि ये सूट ले आऊं, ये उसके लिए जेवर ले आऊं, ये उसके लिए अंगूठी आ जाए, उसके लिए मुख्तलिफ चीजें, पूरा घर बड़े शौक और मोहब्बत से। और मैं घर बैठी सोच रही थी कि सास का ये किरदार हमें क्यों नहीं याद रहता ना, हम सास के इस किरदार से क्यों नहीं प्यार करते। बहू जब बन जाती है, वो आ जाती है, फिर वो चाहती है सास उसको नजर भी ना आए ना, और वो भूल जाती है कि सास ने कभी इतने प्यार से वो मुझे लाई है और अपनी सबसे बेहतरीन चीज मेरे दामन में डाल दी। अब अपना बेटा मुझे दे दिया पढ़ाकर लिखाकर, जब उस पर फल लग गया, जब वो जॉब करने लगा, तो मुझे वो ब्याह करने आई। क्या हो, तुम इस नेमत को मेरे साथ शेयर करो। और फिर वो बहू कहती है कि मुझे ये सास नजर भी ना आए। शादी होती है तो आगाज इसमें होता है कि सास ससुर अलग रहेंगे ना, साथ तो नहीं ना रहेंगे, देखना नहीं चाहती बहू ना। मैं बहू हूं, आप भी बहुएं हैं और बाज लोग आप में से सास भी हैं, तो असल बात क्या है कि दिलों में अल्लाह का डर और मोहब्बत जब होती है, फिर सारे रिश्ते बड़े प्यारे लगते हैं। सास बने तो बहू बहुत अच्छी लगती है, बहू बन जाए तो सास कभी बुरी नहीं लगती, वो भी बहुत अच्छी लगती है। क्यों, वो मेरे शौहर की जन्नत है, मुझे मेरा शौहर अच्छा लगता है, उसकी तनख्वाह अच्छी लगती है, उसकी गाड़ी अच्छी लगती है, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे औलाद वाला कर दिया, मुझे औलाद अच्छी लगती है, तो फिर मुझे अपने शौहर की जन्नत क्यों बुरी लगे। मैं अक्सर यही बात सोचती हूँ कि मैं अपने शौहर से अगर वाकई मोहब्बत करती हूँ तो मुझे उसकी जन्नत से मोहब्बत करनी चाहिए, दिल की गहराइयों से बढ़कर। खैर, लेकिन जो काफिर हैं, कुफ्र करने वाले, इनकार करने वाले, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है? खाना पीना और दुनिया के मजे लेना। तो वो सास जो बहू को सताए, वो बहू जो सास को सताए, बस वो दुनिया में चाहती है कि मैं ही रहूं ना, वो किसी दूसरे को देखना नहीं चाहती। इसी तरह हम रिश्तेदारों के अगर हकूक अदा ना करें, इसी तरह अगर हम अल्लाह के हकूक अदा ना करें, इसी तरह बीवी अगर शौहर के हकूक अदा ना करें या शौहर बीवी के हकूक अदा ना करें, तो कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो काफिर जो हैं, चूंकि उनकी जिंदगी का मकसद दुनिया के मजे लेना है और वो जानवरों की तरह खाते हैं और अपनी नस्ल जारी रखते हैं, वह नारु मस्वल्लहुम, और आग है मस्वल्लहुम उनका ठिकाना। और आप देख लीजिए कि अब ये वो ठिकाना है कि जिसमें उनको आबाद कर दिया गया हमेशा के लिए, ये आखिरी ठिकाना है, चाहे या ना चाहे अब उनको वहां पे आबाद कर दिया गया। वह कई मिन करियतिन, और कितनी ही जो है वो बस्तियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वका अय्यिन, और बहुत सी मिन करियतिन, बस्तियों में से, या वो अशद्दू, अशद्दू यहां पे इस्म तफसील है, बहुत ज्यादा, अफालू के वजन पर, के बहुत ज्यादा, वतन ताकत में, मिन करियती का, तेरी बस्ती से। तो का की जमीर किसके लिए आई? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और आपकी बस्ती कौन सी बस्ती थी? मक्का। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी ही ऐसी बस्तियां गुजर चुकी जो तुम्हारी इस बस्ती से, मक्का की बस्ती से बहुत ज्यादा जोरावर थी। कौमे आद, कौमे समूद, और कौमे जो है वो कौमे शुएब, बहुत सी कौमे जो पैगम्बरों की गुजरी, और फिरौन को आप देख लें, नमरूद को देख लें, तो वो तमाम बस्तियां जो बड़ी ताकतवर थी, बड़ी उनकी लंबी उम्रें और बड़े उनके कद और बड़ी उनके पास ताकत और बड़ा हुनर, सकाफत, और जमीन के अंदर और पहाड़ों को तराश कर उन्होंने महलात बनाए। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि तेरी बस्ती से वो ज्यादा मजबूत थी। और तेरी बस्ती कैसी है, तेरी बस्ती के लोग कैसे हैं, एक जुमले ने पूरी मक्की दौर की कहानी को सामने रख दिया। अल्लती अखरजत, जिसने तुझे निकाल दिया। अब जरा सोचे तो सही, अल्लती मक्का के लिए आया है, और यहां पे ये नहीं कहा जा रहा कि खरजा आप निकले थे, बल्कि अखरजा, तो अखरजत का, उस बस्ती ने तुझे निकाल दिया। तो तेरी बस्ती ऐसी खराब बस्ती, मक्का वाले इतने नाअहल लोग, इतने जालिम, इतनी नाकदरी और नाशुक्री करने वाले, कि वो जो उनको रस्मों से आजाद करवाते रहे, वो जो उनको गर्दन से पकड़ पकड़ कर जहन्नुम की आग से रिहाई की जो है वो आयाज सुनाते रहे, वो जो उनसे बदबू ताफुन उठाते रहे, उन पर मुश्क और अंबर छिड़कते रहे, उनको जन्नत की खुशखबरियां सुनाते रहे, उनके उनसे प्यार करते रहे, उनके लिए दुआएं करते रहे, वो जो नजीर और बशीर बनकर आए, जिन्होंने न दिन देखा ना रात, ना सुबह देखी ना शाम, एक ही फिक्र थी कि ये लोग जहन्नुम की आग से बच जाए, और वो आपके दुश्मन बन गए, और दुश्मन भी कैसे कि अखरजत, आपको निकाल बाहर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलने का बड़ा रंज था। जब आप हिजरत पर मजबूर हो गए, आपने शहर से बाहर निकलकर मक्का की तरफ रुख करके फरमाया था, ए मक्का, तो दुनिया के तमाम शहरों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, और अल्लाह के तमाम शहरों में मुझे सबसे बढ़कर तुझसे मोहब्बत है। अगर मुशरिकों ने मुझे निकाला ना होता तो मैं तुझे छोड़कर कभी ना निकलता। मेरी प्यारी बहनों, ये है वो मक्का, दुनिया के तमाम शहरों से ज्यादा, तमाम मुल्कों से ज्यादा अल्लाह को वो जगह पसंद है। क्यों? अल्लाह का घर है वहां पर, उसके ऊपर बैतुल मामूर है, ये अल्लाह का घर है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने उदास हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं और मक्का की तरफ के लिए ये कह रहे हैं, और आप रो रहे थे, आप जाना नहीं चाहते थे। अफसोस के अहले मक्का ने उनको मजबूर कर दिया निकलने पर। आप और मैं जब भी इस बात को सोचती हूँ तो जायजा लेती हूँ, क्योंकि जिंदगी के मेरी के भी बहुत से साल अपने मुल्क से बाहर गुजर गए, और मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमने अपने मुल्क को छोड़ा बेस्ट फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, डॉलर के लिए, दिरहम के लिए, दिनार के लिए। किसी ने कहा कुवैत के जो डॉलर है, जो उसका दिनार है, उसकी कीमत सबसे ज्यादा, आपको पता है, अरब के ममालिक में सबसे ज्यादा उसकी है, बहरीन की जो है वो सऊदीया से भी ज्यादा है। तो असल बात क्या है कि डॉलर, दिरहम, दिनार, बेस्ट स्टेटस, और दुनिया के लिए हमने अपने मुल्कों को छोड़ा, लेकिन हम फिर भी अपने मुल्कों को याद करते हैं। वहां की कच्ची सड़कें, वहां की धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां, वहां वो ऐसे ही वो जो है वो टोकरियों वाले आकर जो सब्जियां बेचा करते थे, है ना। तो अपनी मुल्क की फिजाएं, हवाएं, मट्टी सब याद आती है, और याद से आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, और बड़ा दिल चाहता है कि वहीं पे जाके रहें, क्योंकि जहां इंसान बचपन से रहा हो, जहां आंख खोली हो, जिस फिजा में, जिस हवा में, वो बहुत याद आती है। और है ना कि किसी शायर ने इस तरह की कुछ बात कही कि पत्थर ही भिजवा दो मुझे अपने वतन से, मैं शेर पूरा नहीं बोल रही इस वक्त जो भी उसका मफहूम है, ताकि मुझे ये एहसास रहे कि पसे दीवार मुझे कोई याद करता है, कि पत्थर ही भिजवा दो, कुछ और नहीं, मुझे पत्थर ही। तो असल बात यह है, और ये इबाज़ों किसका रोना रोते रहते हैं कि बाहर वाले हमेशा पीछे फोन करते हैं, उन लोगों का फोन सस्ता है, वो करते नहीं, लेकिन उनको क्या जरूरत है करने की, इसलिए कि वो तो सबके दरमियान रह रहे, अकेले तो आप हैं, तो अगर कोई फोन कर दे तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ मुझे वहां से फोन आया है। तो खैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दिया गया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तेरी बस्ती वाले इतने खराब हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तुम्हें निकाल बाहर किया। और कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं, वो बड़ी कुव्वत वाली थी, मजबूत थी, और उन्होंने भी जब अपने पैगंबरों की कदर न की, उनके पैगंबर हिजरत पर मजबूर हो गए, उनके पैगंबर को अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इन बस्तियों से निकल जाओ, तो हमने भी क्या किया, अहलक ना हम, हमने भी उनको हिलाक करके रख दिया, फला नासिरा लहुम, फिर कोई ना था उनका बचाने वाला। तो अहले मक्का को समझाया जा रहा है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल कर समझ रहे हो कि बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन असल बात क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने का मकसद ये है कि अल्लाह का अजाब अब तुम पर मंडला रहा है। और आप देख लें कि अभी सिर्फ मक्का से आपने हिजरत की है और ऐसी सख्त आयात हैं, अजाब मंडला रहा है, दुनिया में भी आ सकता है और फिर आखिरत तो सामने तैयार ही खड़ी है। फिर इसके साथ अल्लाह ताला जो है वो इस सूरत मोहम्मद में एक और बात है जो मरकजी मजमून के तौर पर सामने आई है, और वो क्या है, मैं देख रही थी कि इसमें सूरत मोहम्मद में दो किरदार हैं जिनका तकाबुल पेश किया जाता है, दो किरदार और दो अंजाम। दो किरदार क्या है, एक है मोमिनीन और मुखलिसीन का, اور دوسرا ہے منافقین منکرین کا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا موازنہ بھی کرتے جاتے ہیں اور ان کی علامتیں اور نشانیاں ان کا کردار اس کو ظاہر کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا انجام بتاتے جاتے ہیں, ان کے ثمرات بتاتے جاتے ہیں کہ ان کو پھر ملے گا کیا. اور یہاں پہ بھی کیا بتا رہے ہیں, اب پھر ایک سوالیہ انداز ہے, افا من کانا, کیا پس وہ شخص, من جو ہے یہ واحد جمع مذکر مونسب کے لیے آتا ہے, کبھی واحد کے لیے آتا ہے کبھی جمع کے لیے, تو یہاں پہ پوری ایک کردار کے لیے آ رہا ہے کہ افا من کانا, کہ بھلا کیا وہ شخص کانا جو ہو, علی بینتن, روشن دلیل پر. اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے بینتن کی, اور بین کیا ہے کہ دلیل, تو کیا وہ شخص جو کہ دلیل پر ہو, اور دلیل بھی اس کو کہاں سے ملی, من ربہ, اس کے رب کی طرف سے. تو ایک شخص جس کی بنیادوں میں عقائد ہے, اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے, یہی تو ہے سب سے بڑی بینہ, حقائق واضح ہو گئے, تو اس شخص کی بنیاد حقائق ہے, حقیقت. اب جو ہے ایک شخص تو وہ ہے کمن, کیا وہ مانند ہو سکتا ہے اس شخص کے, دوسرا کون ہے, کاف جو ہے کس لیے آیا, مثل, کمن مثل ہو سکتا ہے اس کے, زینا ماضی مجھول ہے, خوبصورت بنا دیا گیا, لہو اس کے لیے, سوء عملہ اس کے برے عمل. اب دوسرا شخص وہ ہے کہ اس کی برائی, سوء برا, عمل ہی اس کا عمل, اس کا برا عمل اس کے لیے مزین بنا کر پیش کر دیا گیا. اور دوسرا اس کا کردار کیا ہے, وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی, ہوا کی جمع ہے اہوا, اور جس کے عمل اس کے لیے برے بنا دیے جائیں, تو دراصل یہ وہ شخص ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا, اہوا اس خواہش کو کہتے ہیں کہ جو بلندی سے نیچے گرا دے. اور خواہشیں کیسی ہوتی ہیں, خواہشیں ایسی, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. اور پھر دوسری بات کیا ہے, دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے چار دن, دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. تو ہمارا حال تو کیا ہے کہ آرزوؤں اور خواہشات کی ایک لمبی کہانی ہے, جس کے برے عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں, بس وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. مثلا ایک بوڑھی عورت سے ملنے کا اتفاق ہوا, اب اس کے پتہ کیا تمنا ہے کہ میں اپنے بس اب نواسے کی شادی ہوتے دیکھ لوں, دیکھ لیں اللہ نے اولادیں دی, اور یا پھر پوتے کی شادی دیکھ لوں, یا پھر آگے پوتے اور پڑپوتے کی فکر ہونی شروع ہو جاتی ہے, نواسے پڑ نواسے کی فکر ہونی شروع ہو جاتی ہے نا, یا پھر کیا ہے کہ مرنا نہیں چاہتا انسان, مرنا نہیں چاہتا, اور ہر وقت ایک ہی گلہ رہتا ہے کہ جو ہے نا طبیعت بڑی خراب رہتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے مشینری جب استعمال ہوتی ہے تو استعمال ہونے کے بعد گھس گھس کر پرانی ہو جاتی ہے, پھر اس کے اوزار تبدیل کیے جاتے ہیں یا اس کو گاربیج کر کے نئی مشین لائی جاتی ہے. تو انسان کا جسم بھی ایک مشین ہے, کہتے ہیں گھٹنے میں بڑی درد ہے, پاؤں بڑا خراب رہتا ہے, ہاتھ میں بڑی تکلیف ہے نا, زندگی کے اتنے سال جو مزے میں نعمتوں میں اور صحت میں گزارے ہیں کہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا. تو اصل بات کیا ہے, خواہشات کی ایک لمبی فہرست ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے. اور مجھے لگتا ہے عورتوں کی فہرست میں سب سے بنیادی میں غور کری تھی, کیا فہرست, ایک عورت کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے, ایک تو اس کو نا کپڑے اور زیور کا بڑا شوق ہوتا ہے. عورتیں جو تھی شکوا کر رہی تھی شوہروں کا, ایک عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ اچھا شوہر نہیں ہے, کیوں, بس وہ کمائی تو کر کے لاتا ہے, گھر کا کوئی کام نہیں کرتا. اب دوسری عورت نے جو اپنے شوہر کی تصویر ڈسکرپشن دی وہ کیا تھی, کہ کما کے بھی لاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تو میرے ساتھ گھر کی صفائی میں بھی کام کرتا ہے. تیسری کہنے لگی نہیں نہیں میرا شوہر اس سے بھی زیادہ اچھا ہے, کما کے بھی لاتا ہے, گھر کی صفائی بھی کرتا ہے, اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ وہ کھانا بھی پکاتا ہے. چوتھی کہنے لگی کہ نہیں میرے شوہر کی کیا ہی بات ہے, یعنی مقابلہ ہوا. تو چوتھی نے کیا کہا कि मेरे शौहर की क्या ही बात है कि वो ये काम करने के साथ साथ फूल भी लेकर आता है मेरे लिए, अनगिनत किस्म के तहायफ भी लाता है, कभी जेवर, कभी अंगूठी, कभी दुल्हन के लिए, और दुल्हन ही कहता है और बहुत कुछ लाता है। अब उस एक और औरत कहने लगी कि ये मेरा शौहर जो है वो इससे भी ज्यादा अच्छा है, कि वो जो है इसके साथ साथ जो है जो कुछ मैं कहती हूं वो मेरा मानता चला जाता है, है ना। तो आप सोचो जो पहली औरत है उसका क्या हाल होगा, और फिर औरत क्या करती है, नशुक्री करना शुरू कर देती है। तो याद रखिए, जिंदगी के मामले में बात दौलत की हो, शौहर की हो, औलाद की हो, दोस्तों की हो, पड़ोसियों की हो, किसी भी रिश्ते की हो, एक उसूल है जो आपको जिंदगी में सुकून देगा, और मुझे तो बहुत सुकून देता है, कनात। जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, जिस हाल में रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, उस पर कनात करें कि अल्लाह ताला मैं लाखों करोड़ों से ज्यादा अच्छी हूं, और अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकती। और कभी अपने शौहर का मुकाबला दूसरों के शौहरों से ना करें, अपने घर का मुकाबला दूसरों के घरों से ना करें, अपनी औलाद का मुकाबला दूसरों की औलाद से ना करें, दुनिया के मामले में, यही आखिरत की बात तो जरूर दूसरों से मुकाबला करें कि हम नेकियों में कैसे आगे निकले। तो असल बात क्या है कि जब इंसान ख्वाहिशात की पैरवी करता है तो फिर वो क्या करता है कि उसके बुरे अमल भी उसको बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि दो किरदार हैं और उनकी अल्लाह ताला उनका किरदार भी बता रहे हैं, एक है कुफर करने वाले और एक है ईमान लाने वाले। ईमान लाने वाले कैसे होते हैं, ईमान और अमले सवाले, और कुफर करने वाले कैसे होते हैं कि रसूल के इनकार का यह हाल कि रसूल को अपने मुल्क से, अपने शहर से बाहर निकाल दिया, निकलने पर शहर से मजबूर कर दिया। दूसरी बात क्या है कि दुनिया ही उनकी जिंदगी का मकसद है, और जानवरों की तरह खाना और नस्ल को जारी रखना। और फिर तीसरी बात क्या है कि बुरे अमल उनको बहुत अच्छे लगते हैं, करते वो हराम काम है लेकिन उनको शैतान खूबसूरत बनाकर उनके सामने पेश करता है। अच्छा, अब फिर मजीद दोबारा जन्नत की बात आ रही है, मसालुल जन्नती, मिसाल जन्नत की, हाल जन्नत का। आप सुनना चाहती हैं जन्नत कैसी है, जानना चाहती हैं जन्नत कैसी है, कौन सी जन्नत, वो किन लोगों को मिलेगी वो जन्नत, अल्लती, वो जन्नत, वो इदल मुत्तकून, वादा किया गया है मुत्तकीन से, वो इदा माजी मजहूल है, वादा किया गया है अल मुत्तकून, मुत्तकी की जमा है। और मुत्तकी किसे कहते हैं, लिखें तो किताबें लिख दें, तकरीर करें तो आप कैसे भर दें, सीढ़ियां भर दें, लेकिन एक लफ्ज ही काफी है मुत्तकी के लिए कि मुत्तकी वो है जो अल्लाह से डरने वाला है, और अल्लाह से डरकर अल्लाह का डर उसको गुनाह छोड़ने पर आमादा कर दे, ऐसा डर फिर वो कभी गुनाह ना करे। इंसान होने के नाते गुनाह हो जाए उससे, पर वो करे ना, और करे तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो तकवा किसे कहते हैं, हर कदम भी जो है वो सोच सोच कर उठाया जाए, हर बात भी जो जबान से निकले तो तकवा की वजह से डर डर कर निकालें, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वो इदल मुत्तकून, तो जन्नत मिलेगी मुत्तकीन को। अच्छा, फिर अब जन्नत में नहरों का जिक्र है, और जन्नत वो है कैसी, फीहा, इसमें है। और यहां पर आप देखें कि चार किस्म की नहरों का जिक्र है। पहली चीज क्या है, फीहा अनहारुन, नहर की जमा है, इसमें है नहरें, निम्मा इन पानी वाली, पानी की, और पानी भी कैसा, गैर आसिन, जो के बदबूदार ना हो। आसिन जो है किसे कहते हैं, हमजा सीन नून से ये लफ्ज निकला है, और इसके मानी क्या है, आसिन के ऐसा पानी जो आसिन वाला ना हो। आसिन असल में उस पानी को कहते हैं जिसका मजा और रंग बदला हुआ हो, जिसमें किसी तरह की बदबू पैदा हो जाए। और आपको तो खूब इस बात का अंदाजा होगा कि आप देखेंगे यहाँ पे लोग जो पानी पीते हैं तो कैसा पानी पीते हैं, और ये जो हेपेटाइटिस सी हो जाता है तो इसकी एक बड़ी वजह क्या बताई जाती है, कि पानी की गंदगी, जो गलत गंदा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से ये बीमारी उनको जो है वो लग जाती है। हमजा सीन नून, और सीन पर पेश भी आती है, सीन के नीचे जेर भी आती है, यानी असाना असुना असीना, तीनों तरह आता है। तो असनल मा, पानी का सख्त बदबूदार हो जाना, पानी में बदबू कब पैदा होती है? जब वो पानी खराब हो जाता है, और बदबूदार भी होता है कभी ये कि आप लिखें बदबूदार प्लस मुतगैर, जिसका देखने में रंग भी तब्दील होता है, मुतगैर। और इसी तरह असनर रजुल, आदमी के लिए भी ये लफ्ज बोला जाता है, पानी की बदबू से बीमार और बेहोश हो जाना। अगर आदमी पानी की बदबू से बीमार हो जाए, बेहोश हो जाए, तो उसे भी कहा जाता है। मसलन बाज औकात होता यह है कि पानी के लिए कोई शख्स कुएं में उतरता है किसी वजह से, मसलन नेजा किसी का कुएं में गया, कुएं में गिर गया, और आदमी उतरा ताकि वहां से कुएं से अपना नेजा उठा ले, तो अब वो कुएं में उतरने वाला बेहोश होकर तड़प रहा है। तो क्यों? इसलिए कि पानी इतना गंदा था, बदबूदार था, खराब था, कि अब वो बीमार पड़ गया। तो उसके लिए तासुन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने पानी की पहली सिफ जो बताई वो ये कि गैर आसिन, और यहाँ पे आसिन लफ्ज जो है ये इसम फाइल है, कि पानी ना उसकी रंगत बदली हुई है और ना ही उस पानी का जो है वो टेस्ट बदला हुआ, खराब नहीं है। दूसरी नहर की किस्म क्या है? वह अनहार मिन लबन, और नहरें हैं दूध की, लबन, लबन की जमा है अलबान। दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। तो दूध की नहरें, लम यतगैर तामहू, नहीं तगैर हुआ, नहीं तब्दील हुआ उसका टेस्ट, ताम जो है वो टेस्ट के लिए आता है, जायका। तो दूध की नहरें नहीं बदलेगा इसका मजा, उसका मजा, उसका जायका जो है वो नहीं बदलेगा, इतनी बेहतरीन है उनके लिए ये नहर दूध की। और आप देख लें कि दूध, आप सूरत नहल में पढ़ चुकी, मिन बैने फरसे व दम, के दूध जो है वो गोबर और खून के दरमियान से निकलता है, तो उसके अंदर एक होती है बिसांग सी, और एक हदीसे मरफू से भी पता चलता है कि वो जानवरों के थनों से निकला हुआ दूध नहीं होगा, अल्लाह ताला ये दूध चश्मों की शक्ल में जमीन से निकालेगा और नहरों की शक्ल में उसे बहा देगा। ऐसा नहीं होगा कि जानवरों के थनों से उसको निचोड़ा जाए और फिर जन्नत की नहरों में डाल दिया जाए। तो कुदरती दूध की तारीफ की जा रही है कि इसके मजे में जरा फर्क नहीं आएगा, जरा सी भी बिसान नहीं होगी, क्योंकि जानवर के थन से जो दूध निकलता है उसके अंदर एक बिसान सी होती है, और अगर उसको थोड़ी देर रहने दें तो खराब हो जाता है ना। बाज लोग देखें डिफरेंट कंपनी है दूध बेचती हैं, और आप यहां से लेते हैं तो आप देखते हैं कि कौन सी कंपनी का बना हुआ है, कि उसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट है। फिर इसके बाद जो है ये बात होगी दूसरी नहर की। अब इसके बाद जो है तीसरी नहर का जिक्र किया जा रहा है, वह अनहारु मिन खमरिन, और नहरें होंगी शराब की। तो खमर जो है किसे कहते हैं? शराब के लिए आता है। ये शराब नहीं जो दुनिया वाली है, हर पीने वाली चीज को भी जो है वो शराब कहा जाता है। तो बहरहाल उनके लिए नहरें होंगी शराब की, लज्जतिन। अब लज्जतिन जो है ये मुबालगे का सीगा है, कि वो जो शराब की नहरें हैं पहली ही उनकी सिफत है और सबसे बड़ी सिफत है लज्जतिन, और ये मुबालगे का सीगा है। तो लज्जत किन्हें मिलेगी? लिशारेबीन, और शारेबीन कौन है? वो इदल मुत्तकून, मुत्तकी आम लोग नहीं है, शारेबीन पीने वालों के लिए इसमें लज्जत है। और आम तौर पे दुनिया की शराब को अगर आप देखें, जितना भी आपने सूरत बकरा में भी उसकी तफसील मैंने बताई थी, और बकायदा कि दुनिया की शराब से क्या क्या मसाइल होते हैं। आप में से रोड टेस्ट किस किसने पास कर लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है? तो आप देखें अक्सर में आपने जो लिया हुआ है, तो इसमें आप जब रोड टेस्ट देते हैं तो बहुत से सवाल अल्कोहल के मुतालिक होते हैं, क्योंकि अल्कोहल क्या करती है, ड्राइवर जो है उसकी वजह से ड्राइविंग नहीं कर सकता, कई दफा एक्सीडेंट हो जाता है। तो दुनिया की शराब जो है उसको इंसान अपने कदमों से रूंद कर निचोड़ता है, और क्या करता है, फलों को सड़ा कर, और दुनिया की शराब जो है उससे इंसान का जो है वो क्या होता है कि जिस्म को नुकसान होता है, अकल खराब हो जाती है। सूरत वाकिया में भी आया आयत नंबर 19 के आखिरत में जो उनको शराब पिलाई जाएगी इससे ना उनके सर में कुछ दर्द होगा, कुछ तकलीफ नहीं होगी, और ना ही आदमी बहकेगा। सूरत सवाफात में भी है, سورہ صافات آیت 47 کہ اس کے پینے سے نہ جسم کو کوئی نقصان ہوگا نہ عقل خراب ہوگی، کہ دنیا کی شراب والی کوئی اس کی کوالٹی نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بہترین شراب ہے. پھر چوتھی جو نہر ہے وہ انہار اور نہریں ہیں، ایک نہیں بہت سی، من اصل شہد کی. اصل جو ہے یہ شہد کو کہا جاتا ہے مصفا، عام شہد نہیں ہے، پاک کیا ہوا شہد ہے، نتھرا ہوا ہے. اور کہتے ہیں اصل جس کی جمع آسال اور اصل بھی آتی ہے، دو اس کی جمع ہیں آسال اور اصل. اور مصفا کون سا پھر شہد ہے؟ جس پر جھاگ نہ ہو، جس کے اندر یہ جو عام طور پہ جو شہد ہوتا ہے، تو شہد کو دنیا میں جب صاف کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ چھتا ہوتا ہے، جیسے شہد کی مکھی کا، اس کی کوئی پر ہو گیا، اس کی کوئی ٹانگ ہو گئی، تو اس کے اندر موم، شہد چھتے کے ٹکڑے، مری ہوئی مکھیوں کی ٹانگیں وغیرہ نہیں ہیں، خالص شہد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خالص شہد کی نہریں جاری کر دی ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تو چار قسم کی نہروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر جامع بات کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اور ان کے لیے ہے اس میں من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل، سب پھل، جتنے بھی پھلوں کا آپ تصور کر سکتے ہیں. بہت سے پھل ایسے ہیں جو آپ نے باہر کی دنیا میں آ کر دیکھے ہوں گے، پاکستان میں یا انڈیا میں یا اپنے ممالک میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو ہر طرح کے پھل، ثمرات ان کی جمع ثمرات، یہ پانچویں ان کے لیے جو ہے یہ نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور چھٹی نعمت کیا ہے؟ مغفرت من ربہم. اور میں گھر بیٹھی رات کو جب پڑھ رہی تھی، رات کو بھی صبح بھی، تو اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور یہ تمام نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. اور مغفرت کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کے تمام گناہ ان کے چھپا دیے گئے، ان کو وہاں پہ رسوا نہیں کیا جائے گا، ذلیل نہیں کیا جائے گا. جیسے دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ کسی کو معاف کر دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ جتایا جاتا ہے اس کے گناہوں کو، اس کی زیادتیوں کو، اس کی باتیں کی جاتی ہیں، تو کیا ہے کہ ڈھانپ لیا جائے گا، غفرہ، چھپا دیے جائیں گے. تو یہ مغفرت ہے کیا؟ ستر ذنبی و تجاوز عن ذنوب، گناہ کو چھپا لینا اور جو گناہ کیے ہیں اس سے جو ہے وہ درگزر کرنا. ستر ذنبی و تجاوز عن ذنوب، کہ وہ اللہ تعالی معاف کر دے گا. اب آپ بتائیے کہ یہاں پہ جتنا بھی آپ نے نہروں کے بارے میں پڑھا، اور ایک دن میں پڑھ رہی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور اس میں میں پڑھ رہی تھی کہ جو نہریں لوگوں کو ملیں گی تو ان نہروں کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے. جیسے حوض کوثر کوئی دیکھے، کہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم سونے اور چاندی کے پیالے آسمان کے تاروں کے برابر دیکھو گے. سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے ان نہروں سے پینے کے لیے، عام نہیں ہوں گے پیالے، ہے نا؟ حوض کوثر کی بات دیکھ لیں. تو اس سے ہمیں پھر کیا بات پتا چلتی ہے؟ کہ بڑی ہی خوبصورت ہے وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہوئی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اور ہر طرح کے پھل جس کا بھی میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں. لیکن حدیث جنت کی جو تعریف کرتی ہے کیا بتاتی ہے؟ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب دوسرا کردار ہے کمن ہوا خالدن، کیا وہ ہو سکتا ہے ہوا خالدن جو ہمیشہ رہنے والا ہے؟ کیا ایسا متقی شخص جو ایسی جنت میں رہے گا جس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو اتنی زیادہ نعمتوں کے اندر ڈال دیا جائے گا، کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو؟ ہوا خالدن فائل آیا ہے، ہمیشہ رہنے والا، فناری، آگ میں. کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکی کہ جو برے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بنار مسو لہم. اب دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جا رہا ہے، ان کا کردار بھی اور ان کا انجام بھی. اچھا، جب ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تو ہوگا کیا؟ وسکو وسکو، اور پھر فرمایا کہ ان کو جو ہے پلایا جائے گا. یہ سکو جو ہے اصل میں یہ ماضی مجھول ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ. وہ پینا نہیں چاہیں گے، ان کو پلایا جائے گا، ما ان حمیمن. اب یہ اس پانی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ پانی گرم اور انتہائی گرم. حمیم اس پانی کو کہتے ہیں جو نقطۂ عروج پر، انتہائی نقطۂ عروج پر گرم ہو. कभी खोलते हुए पानी को देखें आप, और वो तो दुनिया का जो पानी अगर खोल रहा है एक दर्जा है, जहन्नुम की आग तो इससे 69 दर्जे ज्यादा है, खोलता हुआ पानी उनको दिया जाएगा। मुफस्सरीन कहते हैं मान हमीमन की हैसियत यहां नुजुल की है, जहन्नुम के अंदर नुजुल की है। अब नुजुल से आपको वो सारी तफसीर याद हो आ जानी चाहिए जो पीछे मैंने आपको बताई थी। तो नुजुल उस मेहमानी को कहते हैं जो मेहमान जब किसी के घर जाता है तो सबसे पहले मेहमानी उसको मिलती है, सबसे पहले जो मेहमानी होती है उसमें मेहमान को तसव्वुर भी नहीं होता कि क्या मिलेगा, और पहला जो खाना होता है बड़े एहतमाम से बनाया जाता है, बड़ा एहतमाम। तो ये जहन्नमियों के जाते ही जो उनको नुजुल होगा, मा अन हमीमन, और उस हमीम की शिद्दत का अंदाजा करें, फकत्ता, ये बाबे जो कौन सा बाब है, तकती उनसे आप कत्ता यु कत्ता तकती उन, है ना, बाबे जैसे आप देखें तफील है, बाबे तफील में क्या होता है जैसे आप यूं भी आ कत्ता ला यु कत्तिलु तकतील उन, टुकड़े एक हो किसी को कत्ल कर देना, बस मार दिया, एक है मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो अब क्या है कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, आप सोचे तो सही, जरा तसव्वुर करें कि टुकड़े टुकड़े कर दिया, काट कर रख दिया, काट कर एक बड़ा टुकड़ा नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दिए, किस चीज के, अहम उनकी आंतों के, उनकी अंतड़ियों के, अहम जो है इसका वाहिद है मायुन, मीम ऐन या, और हर किस्म की छोटी बड़ी अंतड़ियों को कहते हैं। आपने हवाया भी पढ़ा था ना अंतड़ियों के लिए, और दूसरा लफ्ज जो कुरान में आता है अमआ, तो उनकी आंते जो हैं उनको वो गर्म पानी काट कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। आप देखें कि बाज औकात गर्म चीज जब हम लेते हैं पीते हैं तो जबान जल जाती है ना, जबान जल जाती है। अब ये है कि वो पिएंगे तो नहीं, पीना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि जबान जले तो पीना छोड़ दें। वसुकुमान हमीमन, जहन्नुम को, जहन्नुम में जहन्नमियों को फरिश्ते जबरदस्ती उनको गर्म पानी पिलाएंगे, और जो ही वो पिएंगे तो उनकी आंते जो है ना वो कट जाएंगी। इससे क्या बात पता चलती है कि जहन्नुम के अंदर जो उनको उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है वो इतनी खौलता व शदीद पानी है कि पीते ही उनका उनकी जो आंते हैं ना वो टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। आप जरा तसव्वुर तो करें, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार। अब आप देखें कि यहां तक जो है दो किरदार हमारे सामने रखे गए, एक मुत्तकीन का है और दूसरा काफिरों का है, और साथ साथ उनका अंजाम, और हमें भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम जो हैं वो कहाँ पे खड़े हैं और हमारे अमाल जो हैं वो कैसे अमाल हैं, और हमने जो है वो अल्लाह के पास जाने की कैसी तैयारी की है। क्योंकि जन्नत से मोहब्बत करना और चीज है और जन्नत के लिए तैयारी करना और चीज है और जन्नत के शौक में जीना और चीज है। तो सहाबा का तर्ज अमल क्या था, सहाबा का तर्ज अमल ये था कि वो लोग जो थे वो दुनिया में रहते थे आखिरत में जीते थे, उनके सामने जन्नत और जहन्नुम ऐसे होती थी जैसे कि अपनी आंखों से देख रहे हो। हमारा हाल क्या होता है, दुनिया के अंदर खोए हुए हैं और ये आयात हमारे दिल के अंदर आती नहीं है, इनकी समझ ही नहीं आती इनकी शिद्दत का और जन्नत की लज्जत का, जहन्नुम की शिद्दत का और जन्नत की लज्जत का हमारे अंदर एहसास पैदा नहीं होता, और वो हमारे अमल से पता चलता है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 16 जो है, आयत नंबर 16 से एक और मजमून शुरू होता है।